शांति। एक बल, एक भरोसा, एक में ही संपूर्ण विश्वास। यज्ञ के कोहिनूर, गंभीरता रमणीकता का अद्भुत बैलेंस हमारे वरिष्ठ भाई परम आदरणीय ब्रजमोहन भाई जी हमारे बीच हैं। हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं और नमन करते हैं। आदरणीय भाई साहब त्याग तप की प्रतिमूर्ति हैं। आपने सब कुछ पाके सब कुछ छोड़ा है, प्रभु के इशारे पर नाम मान शान भौतिकता के ज्वार भाटे को भी प्रभावित कर दिया। आपने बाबा का बनकर घर घर ईश्वरीय शिक्षाओं को पहुंचाने के लिए पाठ्यक्रम बनाए गए और घर घर पहुंचा करके अनेकानेक आत्माओं की सेवा के आप निमित्त बने। प्योरिटी के भी मुख्य संपादक रहे और कलम के भी आप बहुत धनी हैं। आपने रहनुमाओं की रहनुमाई की विंग भी, पॉलिटिकल विंग भी तैयार की, जिसके भी आप चेयरपर्सन हैं। अतिरिक्त महासचिव आप ब्रह्मा कुमार हैं, डायरेक्टर ओआरसी हैं और आर्ट गैलरी के भी आप निर्देशक हैं। अद्भुत व्यक्तित्व के आप धनी हैं, आप सभी जानते हैं, चिरपरिचित हैं आदरणीय भाई साहब। चार पंक्तियां कहना चाहूंगी आदरणीय भाई साहब के लिए। जहां ए नूर का हम नूर लेकर आए हैं, जहां ए नूर का हम नूर लेकर आए हैं, खजाना ज्ञान का भरपूर लेकर आए हैं, बनाए ही जिसने कदमे निशा दुनिया में, शख्सियत बेनजीर लेकर आए हैं, शख्सियत बेनजीर लेकर के आए हैं। तो आज हम भाई साहब के इतने लंबे अनुभव के आधार से सुनेंगे आदरणीय भाई साहब से शोकेस सैंपल बनने की विधि, दिनचर्या का महत्व व पढ़ाई। आदरणीय भाई जी का पुनः स्वागत करेंगे एक हाथ उठा करके और अभी उनसे हम सुनेंगे।
ओम शांति। इस सारे कल्प के, इस डायमंड युग, हम जानते हैं पांच युग हैं और डायमंड युग संगम युग है। डायमंड युग के डायमंड हॉल में डायमंड आत्माएं बैठी हैं। दुनिया में सबसे कीमती चीज डायमंड होता है। और डायमंड बहुत सख्त होता है, उसके अंदर कुछ थोड़ी बहुत, जिसको बाबा कहते हैं फ्लॉ, रह जाए तो निकालना बड़ा मुश्किल होता है। उसको काट के फ्लॉ निकाला जाता है। दुनिया के डायमंड को, चेतन डायमंडों के अंदर भी फ्लॉ होता है। अब फ्लॉ जो होता है उसको खत्म करने के लिए हम इस डायमंड हॉल में इकट्ठे हुए हैं। बाबा ने अपने बच्चों को हीरे तुल्य बनाया, स्वयं बाबा लौकिक में हीरे के व्यापारी थे, वो पत्थर के हीरे छोड़कर चैतन्य हीरों का व्यापार किया और हमें किस तुल्य से हीरे तुल्य बनाया, कौड़ी तुल से हीरे तुल। तो पहले जो मर जीवा जन्म से पहले सबका जो जन्म था कलयुग के अंत वाला, वो था कौड़ी तुल्य। कौड़ी सबसे सस्ती चीज होती है और बाबा ने हमको इसी जन्म में दूसरा जन्म दे दिया जिसको हम मर जीवा जन्म कहते हैं। काहे के लिए दिया? हीरे तो बना दिया, हीरों में भी क्वालिटी होती है, तो इसलिए अपने भाग्य को देखकर कि सारी दुनिया की 850 करोड़ आत्माओं में से प्यारे बाबा ने कहां से ऐसे परख से पहचाना अपने बच्चों को कि ये तो मेरे सज्जू के हीरे तुल्य बच्चे थे, तो ऊपर थोड़ा मिट्टी चढ़ी हुई है, पहचान करके हमको यहां लाया है। इसलिए बाबा कहते हैं कि किसी गरीब के बच्चे को, झोपड़ी में रहने वाले को कोई महाराजन अडॉप्ट कर ले तो उसकी किस्मत खुल जाती है। तो बाबा ने हमको खुश किस्मत, पद्मा पद्म भाग्यशाली, दुनिया में किसी की किस्मत खुलेगी तो एक जन्म के लिए, परंतु यहां तो दो युगों के लिए हमारी किस्मत खुल जाती है। तो जब हम अपने भाग्य को देखते हैं, सिमरन करते हैं, तो बाबा ने कहा है कि पहले पहले मैंने बच्चों को यही पूछा, पहले कभी मिले हो? और बच्चों ने उत्तर दिया, हाँ बाबा कल पहले मिले थे। अब आप सोचो, आज के दिन, आज की डेट में, आज के समय पर पहले आप कभी डायमंड हॉल में बैठे हो? जो पहले कभी स्मृति में लाइए, इसी ड्रेस में, इसी प्रकार से, इसी घड़ी, इसी डायमंड हॉल में, इसी प्रकार बैठे थे, तो जरा अपना दायां हाथ उठाइए, देखें कौन कौन बैठे थे। कोई कोई नहीं बैठे थे। बैठे तो थे पर हाथ नहीं उठाया था, अगले कलब भी नहीं उठाएंगे। यहां हाथ उठाने के भी नंबर है। अगर हमने शो केस के सैंपल बनना है तो जब हाथ उठाने का समय है तो हाथ उठाने के भी नंबर हैं, हाथ नीचे करने का समय है तो हाथ नीचे करने के भी नंबर हैं। शो केस वाला बनने के लिए क्या होता है कि जिस समय जो चीज करनी है उसको हम करें, पर माया क्या करती है? माया बहुत सूक्ष्म तरीके से आती है। वो कहते हैं हाथ उठाना तो साधारण भाइयों का काम है, हम तो बड़े महान हैं, हमारा हाथ बड़ा महंगा है, भगवान कहेगा तो उठेंगे, वैसे नहीं। तो ये वो ये नहीं जानते, यहां सब कुछ हमसे भगवान ही करा रहा। इसलिए अगर हमने शो केस के शो पीस बनना है तो ये पक्की बात समझ लीजिए, एक ही आसान सा काम है। वो क्या है? बहुत ही आसान है। कि जिस समय जो करना है उस समय हम वो करें, जिस समय जो सोचना है उस समय हम वो सोचें, आगे पीछे नहीं। अगर बाद में सोचा हाथ उठा लेते तो अच्छा था, क्योंकि ऊपर वाले के कैमरे में तो आ गया वो, तो देखेगा कि 100 पीस वाले कौन हैं, कम से कम जिन्होंने इतना कष्ट तो किया हाथ उठा दिया। अच्छा, इसलिए देवताओं में जो गोल्डन एज के हैं, डायमंड एज तो उससे भी ऊपर है, गोल्डन एज के देवताओं की क्या क्वालिटी है कि वो हर चीज को ठीक समय पर, ठीक स्थान पर और ठीक विधि से करते हैं, उसको कहते हैं देवता। कलयुग के लोग भी करते हैं, लेकिन या तो उनका समय ठीक नहीं होता, या स्थान ठीक नहीं होता, या विधि ठीक नहीं होती। वो भी सोते हैं, लेकिन दोनों के सोने में फर्क होता है। जो भी कलयुग के मनुष्यों की विशेषताएं हैं, उसमें या तो समय बदल जाता है, गीत गाना बहुत अच्छा आता है लेकिन रात के 12 बजे उठ के आलाप करना शुरू कर देते हैं, समय गलत हो गया, या स्थान गलत होता है, जहां साइलेंस में बैठना है वहां सोचने लग जाते हैं, जहां सोचना है वहां सोचते हैं, साइलेंस सबसे अच्छी चीज है। और विधि का मतलब होता है मर्यादा अनुकूल। अब अमृत वेला है, अमृत वेला उस समय में क्या करना है? बाबा कहते हैं मैंने अपने बच्चों के लिए विशेष अमृत वेला रखा हुआ, भक्तों को उसके बाद मिलता हूं, सबसे पहले अपने बच्चों को, कुछ भी नहीं करना। जैसे हम मधुपान आते हैं तो हमें अपने भोजन का, अपने बिस्तर का कोई ध्यान नहीं रखना पड़ता, यहाँ सब समय पर होता है। अमृत वेले कुछ भी नहीं करना, हाजिरी लगवानी है, बाबा हम आ गए, तो आप सोच सकते हैं अमृत वेले क्या करते हैं। सबसे ज्यादा आलस्य अगर आता है तो अमृत वेले आता है। और बाबा ने जानबूझ के अमृत वेला रखा हुआ है, जो आएगा सो पाएगा, जो सोएगा सो खोएगा। तो छुट्टी हो गई, फिर आ भी गए तो हमने बाबा से लेना है। बाबा कहते हैं मैं आपकी झोली भरता हूं, जैसे पेट्रोल भरवाते हैं तो पेट्रोल वाले पेट्रोल भर देते हैं। बाबा ने मुरली में बताया था आत्मा का ताकत घटती जाती जैसे पेट्रोल घटता जाता है, तो सुबह अमृत में ले चले जाओ तो आपकी सब पानी हवा सब ठीक करके फिट करके भेज रखेगा। भगवान है, उसने कहा हुआ है कुछ भी नहीं करना, साइलेंटली करेगा। पर मान लो बाबा हमारे को अमृत भरना चाहे पर हम अपनी टंकी का ढक्कन ही नहीं खोलें, या आधा खोलें, फिर क्या होगा, या गिरा दें। इसलिए फिर वही बात आ जाती है कि ठीक स्थान पर, ठीक समय पर, ठीक विधि से हमको हर कुछ करना। हमको कहा जाता है अशरीरी बनो, विदेही बनो, वो तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर हमने परम धाम में भी जाना है या सतयुग में भी जाना है या और तो छोड़ो अगले जन्म में भी जाना है तो ये शरीर तो नहीं जाएगा। इतना तो ज्ञान हमको शुरू से ही है, आत्मा जाएगी। जब हम कहते हैं कल्प पहले वाले तो आत्मा ने चक्कर लगाया है, जब बाबा सुदर्शन चक्कर की बात करते तो आत्मा के चक्कर की बात करते हैं। और बाबा ने कहा है कि एक बाबा सिर्फ ध्यान में रहे तो रचना भी ध्यान में रहेगी, चक्कर भी ध्यान में रहेगा, वर्तमान समय भी, क्योंकि वो बीज है। अब आप सोचिए कि सारे दिन में वैसे भी आप अपने शरीर में कितना समय रहते हैं, सोचिए सारे दिन में हैं तो आप शरीर में, लेकिन शरीर में कितना समय रहते हैं। ऐसे नहीं कि शरीर से निकल जाते हैं, वो तो फिर अलग बात हो जाएगी। जैसे सपने में आप सोए हुए हैं और आपको सपना आ रहा है तो आप शरीर में तो हैं, लेकिन सपना जहां आपको घुमा रहा है वहीं आप हैं। खुशी का सपन भी आ जाता है, डराने वाला भी आ जाता है, दौड़ लगाने वाला भी आ जाता है, पर आप जहां आपका मन है वहीं आप हैं। अच्छा, तो आप स्नान कर रहे हैं तो सारा टाइम आप स्नान कर रहे हैं तो स्नान में ध्यान रहता है या मन कहीं इधर उधर भी जाता है। कर रहे हैं स्नान, मन सोच रहा है कि मेरी ट्रेन की टिकट गुम हो गई है या मुझे ये करना है या मुझे वो करना है, तो मन शरीर को स्नान करा रहे हैं तो आप शरीर में तो नहीं है ना। जहां आपका मन है फिर सोचेंगे अरे मैं तो नहा रहा हूं। भोजन कर रहे हैं, अब भोजन करते समय शुरू तो करते हैं बाबा को याद करके, जैसे भक्ति मार्ग में हर चीज का रसम होता है, लेकिन एक मिनट बाद या तो कोई साथी बैठा होता है, आमतौर पे जिस सेंटर से आते हैं उन्हीं के साथ बैठ के भोजन भी करते हैं। ये नहीं कि चलो नयों से कर लें, वहां तो हम रोज ही मिलते नहीं, वो अच्छा लगता है, इजी लगता है, तो बातें में लग जाते हैं या भोजन में लग जाते हैं तो भी शरीर में नहीं रहते। तो हम शरीर में वैसे भी आजकल के हिसाब से मन हमको इधर उधर, चाहे व्यर्थ में कहो, चाहे साधारण में कहो, चाहे लौकिक में कहो, भटकाता रहता है। तो सैंपल कैसे बनेंगे, क्योंकि यहां तो बाहर का फोटो नहीं खींच रहा, एक्सरे में भी आपके अंदर का फोटो खींचता है। आजकल तो बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं, वो और अंदर की चीजें का फोटो खींचते हैं, दिमाग का भी खींचते हैं। तो बाबा के पास हमारा कौन सा फोटो खींचता है जिससे वो चुनेगा कि भई ये सैंपल हैं। सैंपल दो तरह के होते हैं, आपको पता है, मुरली अम्बी भी आया हुआ है। एक सैंपल होते हैं जिनकी मंदिरों में पूजा होती है, लाइनें लगती हैं, भीड़ लगती है, धक्का खाना पड़ता है। एक सैंपल म्यूजियम में रखे जाते हैं। आप कभी म्यूजियम में जाए हैं दुनिया के, वहां क्या होता है, किसी मूर्ति की आंख टूटी हुई है, किसी का नाक टूटा हुआ है, पुरानी कोई चीज है आदि है, वो भी सैंपल गिना जाता है, पर वो म्यूजियम में रखने लायक होता है। तो ये भी है, इसलिए हमको देखना है कि अगर हमने शोकेस वाला सैंपल बनना है तो शोकेस के सैंपल हैं लक्ष्मी नारायण, जो 5,000 साल पहले हुए आज भी मनुष्यों को उनकी बायोग्राफी पता नहीं, कितने साल पहले आए ये पता नहीं, कुछ पता नहीं, लेकिन आज भी उनकी मूर्ति चाहे बहुत बढ़िया मूर्ति हो किसी बड़े मंदिर में या छोटी मूर्ति हो, बड़े बड़े भगत हों या साधारण भगत हों, उनकी मूर्ति के आगे जाकर पुष्पम पत्रम रखेंगे, फल फूल रखेंगे, झुकेंगे, उनके दर्शन करके खुश होंगे मूर्ति के। तो हो गए सैंपल, शो केस मैंने मंदिर। बाबा कहते हैं कि ब्राह्मणों का यादगार नहीं बनता, क्यों? मूर्ति में कम से कम इतना होता है कि जैसी है वैसी रहती है। आप शाम को चले जाएं, सुबह चले जाएं, किसी वक्त चले जाएं, अगर मूर्ति मुस्कुरा रही है तो मुस्कुरा रही है। और ब्राह्मणों का क्या होता है आप जानते हैं, किसी वक्त उड़ती कला में हमारे जैसा कोई नहीं, हमें बाबा ने चुना है, हमारा तो गारंटी है कि हम स्वर्ग में आएंगे, नशा चढ़ा हुआ। और किसी वक्त काला बादल आ गया सूर्य के आगे, पता नहीं इतने साल हो गए, पता नहीं ये मुझे क्या हो रहा है, मुझे तो टेंशन हो रहा है, ये मेरे को प्रॉब्लम क्यों आ रही है, मेरे को ही आ रही है, उसको क्यों नहीं आ रही। थोड़ी देर बाद बादल चला गया, फिर नॉर्मल। इसलिए हमको क्या कहा गया है, 5 बातें हम सबको बताई गई हैं, जिसमें सबसे पहली है एक नामी। यानी वैसे तो हम गाते हैं मेरा तो शिव बाबा एक, आगे की लाइन क्या है, तो पहली लाइन तो सबको पक्की है कि मेरा तो शिव बाबा एक। कभी तकलीफ हो जाए, कष्ट हो जाए, शिव बाबा, जब और कोई काम ना आए, पहले तो इधर उधर की ट्राई करते हैं, लेकिन जो दूसरी लाइन है दूसरा ना कोई, तो फिर हमारा स्लोगन क्या है, दोनों हाथ में लड्डू, शिव बाबा भी मेरा और दूसरे भी मेरे। ठीक है, तो फिर एक नामी तो नहीं हुए। किसी के माता पिता नहीं होते, ऑर्फन होता है तो उसको पूछे तेरे माता, वो हर एक को पिताजी कहेगा, ये भी सभी हमारे पिता हैं, क्योंकि उसका बेचारे का कोई पिता नहीं है। अगर हम परम पिता एक पिता को कहते हैं और ये भी कहते हैं कि आप सारे संबंध निभाने वाले हो, आप सर्वशक्तिवान हो, आप ही टोटल हमारा परिवर्तन करने वाले हो, तो फिर हम साथ में चाचे को ताऊ को इसको भी पिता कहना शुरू कर दें, तो पिता क्या सोचेगा कि जाओ इनके पास। इसलिए ये जो एक नामी है ये पक्का है, बाबा ने हमको अनेक तरीके से समझाया है कि सिवाय केवल शिव बाबा के और कोई भी क्या, शिव बाबा के सिवाय और कोई भी पतित पावन नहीं है, ना हमारे विक्रम विनाश कर सकता है, ना हमें आगे के लिए जमा करवा सकता है, ना हमारा योग लग सकता है। अगर हमारा योग, बाबा कहता भक्ति भी हमने की थी तो पहले एक की थी, अब एक अनेकता में चले गए हैं। तो हमेशा कहा गया है अनेकता में जाने से विस्तार हो जाता है, एकता में जाने से सार होता है। तो सारा ज्ञान शिव बाबा को याद कर लो तो आपको सुदर्शन चक्र भी याद आ जाएगा, आपको कमल पुष्प भी याद आ जाएगा, आपको सतयुग से लेकर कलयुग की आदमदे अंत भी याद आ जाएगी, आपको तीनों लोक भी याद आ जाएंगे, सब आ जाएगा, लेकिन शिव बाबा। फिर भी यहां तक बाबा ने कहा है कि देवी देवता सर्वश्रेष्ठ देवी देवता श्री कृष्ण लक्ष्मी नारायण भी पावन हैं, पावन हैं, सबसे पावन हैं, पतित पावन नहीं है। ऐसे ही देहधारियों में हमारे बड़े पावन हैं लेकिन पतित पावन नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी पतित पावन नहीं है। तो अभी हमें तो पावन बनना है, हमारा काम तो पतित पावन से है। जो एक बारी हमारे सारे पिछले जो हमारी जिसको हम कहते हैं पाप शब्द जरा बड़ा है, जो हमारे विकर्म हैं या अज्ञान वश किए हुए गलत कर्म हैं उन सब छुड़ाए, वो सिर्फ एक है। शारीरिक रोग हैं, मानसिक रोग हैं, कई ब्राह्मण आज भी ये सोचते हैं कि फल खाओ, बादाम खाओ, सैर करो। क्यों? संगम का जन्म बड़ा अमूल्य है, ये जितना रहेगा ना उतना अच्छा है। लेकिन भगवान ने कहां लिखा है कि फल खाने से तुम्हारा स्वास्थ्य बनता है, तुम्हारे बादाम खाने से तुम्हारा स्वास्थ्य बनता है, या मुरली के वक्त सैर करने से तुम्हारा स्वास्थ्य बनता है? कहां लिखा है? कलयुगी फल, कलयुगी बादाम, कलयुगी स्वास्थ्य। क्या लक्ष्मी नारायण कभी सैर करते थे? क्या लक्ष्मी नारायण कभी अलग से बादाम खाते थे? तो धोखा है कि नहीं धोखा है कि कलयुग की हर चीज कलयुगी है। बाबा ने तो कहा योग लगाने से तुम्हारा स्वास्थ्य बनता है, तो हम क्या कर रहे हैं? कोई समय था मैं भी ऐसे करता था। एक दिन मैं बादाम खा रहा था कुंडा लगा के, कोई मिलने आ गया, मैंने कुंडा खोल दिया, मेरे मुंह में आधे बादाम थे, मैं ऊं कर रहा था। उस दिन मैंने सोचा कि भाई तुम ये क्या कर रहा है, इतने बादाम से तेरा क्या होने वाला है, और ये कलयुगी बादाम है, ये भी तमोगुणी है। इसलिए आपसे हम पूछते हैं कि क्या सतयुग में कोई भी खराब चीज हो सकती है? सतयुग में क्या कोई भी खराब चीज हो सकती है? जो कहे नहीं दाया हाथ उठाइए। ये तो बहुत ठीक आंसर है, आपको मुबारक हो। सतयुग में कोई खराब चीज नहीं होती, संकल्प भी खराब नहीं होता, कुछ देखने की चीज भी खराब नहीं होती। अब इसको जरा उल्टा कर लीजिए, क्या कलयुग में कोई अच्छी चीज हो सकती है? अगर बाबा तो हमेशा दो चीजों का कंट्रास्ट बताते हैं, तो अगर सतयुग में कोई खराब चीज हो ही नहीं सकती तो कलयुग में क्या कोई अच्छी चीज हो सकती है? अब हाथ उठाइए जो कहते हैं कि कलयुग में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, बिल्कुल तमो प्रधान है। क्या कलयुग की आप किसी भी चीज को अच्छी समझ के यूज करते हो? इससे मेरी स्वास्थ्य बन जाएगा, इससे मेरे कंफर्ट हो जाएगा, इसको मेरा फायदा हो जाएगा या नहीं। बाबा ने क्यों कह रखा है कि भोग लगा के भोजन करो, क्यों कह रखा? इसीलिए उस कलयुग का जो तमोगुण का प्रभाव है वो उसमें से निकल जाए, बाबा शक्ति भर दे, प्योरीफाई कर दे। दुनिया में भक्ति में या मंदिर में प्रसाद लेते थे, ये भगवान को ऑफर किया हुआ है। इसी प्रकार से बाबा कहते हैं संघ है, सतयुग में तो देवी देवता ही रहते हैं, कलयुग में एक भी आत्मा है, एक भी आत्मा जो बिल्कुल सतो प्रधान, बिल्कुल ऐसी है जिसका संग करने से आपको किसी तरह के कोरोना का या किसी प्रकार के संग दोष का खतरा नहीं है। एक भी है, एक भी है, सोच के बताना। बाबा ने कह रखा है जिस दिन हम वैसे बन गए, कर्मातीत बन गए, ये शरीर नहीं रहेगा, कहा हुआ है ना कि जिस दिन हम कर्मातीत बन गए ये तमोगुणी शरीर नहीं रहेगा। आज भी बाबा ने कहा कि देवी देवताओं की परछाई भी कलयुग में नहीं पड़ती, परछाई। अब बताओ अगर हम किसी से मिलें और उसकी भ्रिकुटी में देखे बगैर ना मिले, उसको डायमंड समझ के ना मिले, बाबा को याद करके ना मिले, तो आपको संग दोष का खतरा है कि नहीं है? क्यों? पर चिंतन पतन की जड़ है, ये तो सब मानते हैं, पर चिंतन पतन की जड़ है। अब कोई आपसे बहुत बेटर पुरुषार्थ करने वाला आपको लगता है कि ये आत्मा बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रही है, इसकी धारणा बहुत अच्छी है, ये तो शो केस में रख ही देना चाहिए, ये परचिंतन है कि नहीं है? क्यों? पहले तो आपको आएगा कि मैं इससे कम हूं, तो आपके अंदर निराशा आएगी, देखो इसने इतना बड़ी धारणा कर ली, मेरी कम है। आपको कुछ फायदा हुआ निराशा से? नहीं। अपने नीचे वालों को देखोगे तो आप लापरवाह हो जाओगे, इससे तो मैं अच्छा हूं, तो भी परचिंतन नुकसानकारक है। बाबा ने क्या कहा है? ऑलवेज सी ब्रदर एंड सिस्टर नहीं कहा, खास कहा है ऑलवेज सी फादर एंड मदर। क्यों? उसमें हम धोखा खा जाएंगे, या तो हम अलबेले हो जाएंगे या हम निराश हो जाएंगे। हमने क्या लेना है? वो स्टूडेंट अपनी पढ़ाई पढ़ रहा है, मैं स्टूडेंट हूँ अपनी पढ़ाई पढ़ रहा हूँ, तो मेरी एकाग्रता तो खत्म हो गई। इसलिए ये छोटी छोटी बातें हैं। बाबा ने कहा और कुछ नहीं, हर कर्म करने से पहले मुझे याद कर लो, ये भी इसीलिए है। जैसे कोई किसी खराब एरिया में जाता है तो अपने हाथ में कुछ लगा लेता है कि भी मेरे पर इसका असर ना आए, लेकिन वो होता नहीं। अगर जैसे कहा जाता है थिंक बिफोर यू स्पीक, तो और हर व्यक्ति बोलने से पहले क्या रुक के सोचेगा मैंने क्या बोलना है? नहीं, ये एक स्वाभाविक चीज होनी चाहिए। इसलिए मोटी बात ये है, हम सब योगी हैं, हमको पता है कि योग से ही हमारे इतने जन्मों के कर्म विनाश होने हैं, और हम योग लगाते भी हैं। केवल जिस वक्त दुर्घटना घटती है उस समय सावधानी हटी हुई होती है, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, अगर सावधानी हो तो दुर्घटना हो नहीं सकती, और दुर्घटना हो रही है इसका मतलब सावधानी घटी। तो कारण क्या है? एक होता है नेचुरल झरना, तो नेचुरल झरने में पानी बहता रहता है, نیچرل گلاب کا باغیچہ ہے تو اس میں سے خوشبو آتی رہتی ہے. آج کل کھلونے بھی ملتے ہیں, بہت اچھا جھرنا آپ کو مل جائے گا, پر آپ بٹن دباؤ گے تو پانی آنا شروع ہو جائے گا, بٹن دباؤ گے پانی بند. ایسے نکلی پھول بھی ملتے ہیں جس کے اندر خوشبو کا رہتا ہے شیشی, بٹن دباؤ گے اس میں خوشبو بھی آنی شروع ہو جائے گی, اور بٹن دباؤ گے پھر بند. اس کا مطلب کیا ہوا کہ سمرتی کا سوئچ آن کیا تو ہم راج یوگی, ہم بابا کے بچے, ہم برہمن, ساری ہماری اپنا سلیبس سامنے ہے, سارے سبجیکٹ سامنے ہے. جیسے آپ کسی دوسرے سینٹر میں جاتے ہو یا کسی اور جگہ بھوجن کرتے ہو, اس سمے بھی آپ بابا کو یاد کرتے ہو شروع میں, تو تھوڑا زیادہ یاد کرتے ہو کہ دوسرے دیکھ رہے ہیں کہ بھائی میں نے یاد کیا اچھی طرح, وہ یہ نہ سمجھے ایسے کھانا شروع کر دیا. کیا وہ کام آپ اپنے گھر میں بھی کرتے ہو؟ نہیں, چلو بابا کو یاد, بابا کو تو پتہ ہی ہے نا. اچھا, فرق ہو گیا. اس کو کہتے ہیں سوئچ آن اور آف کرنا دیکھ کر, لوک کلیان ارتھ دیکھ کر, سنگٹھن کو دیکھ کر, بھٹی کو دیکھ کر, کسی پروگرام کو دیکھ کر, اپنے رول کو دیکھ کر ہم ڈریس اپ ہو کے میک اپ کر کے آتے ہیں. لیکن بابا کہتا ہے کہ ہمیں نرنتر یوگی ہونا ہے. یہ اوشیہ ہے کہ جب ہم خاص یوگ میں بیٹھتے ہیں اس وقت شکتی سالی ستھی ہے, لیکن اس کا یہ ارتھ نہیں کہ آپ سونے جا رہے ہیں تو آپ کی نیند میں بھی یوگ نہ لگے. تب بابا نے ہمیں پرہیز بتایا ہوا ہے کہ سونے سے پہلے اپنا سارا اکاؤنٹ بابا کو دے کر, بیڈ پر نہیں ساتھ کی کرسی پر بیٹھ کر ہلکے ہو کے سو گے تو تمہاری نیند بھی یوگ گنی جائے گی, اور نہیں تو جاگرت اوستھا میں بھی یوگ گنا جائے گا جو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اب میرے کو ٹینشن ہو گیا, اب میرے کو جلدی آ گئی. بابا نے کہا آتما ستھر رہے, میرے کو تو جلدی لگ رہی ہے. اس لیے یہ ایک نامی جو ہے اس کا ابھیاس کرنا سیدھی بات ہے. میں آتما بندی وہ بھی بندی, تو یہ ابھیاس اگر ہم ریگولر رکھیں گے, ایسے نہیں کہ بیچ میں کھو جائے کوئی چیز کا اٹریکشن کھینچے, تب بابا کہتا ہے ایسا نہ ہو کہ خراب سمے آ جائے. خراب سمے تو آپ کا یوگ بھی نہیں لگے گا. اس سے پہلے پہلے, آج بھی مرلی میں بابا نے کہا, اس سے پہلے پہلے ہم اپنے آپ کو وکرم وناش کر لیں, تاکہ وہ ہماری نیچرل اوستھا رہے. تو نیچرل نیچر بابا نے کہا ہے ہمیں اپنے نیچرل نیچر کو یوگک بنانا ہے, یہ ہمارے ہاتھ میں ہے. تب کہتا ہے کوئی وشیش چیز میں اٹریکشن ہوگا, چاہے ڈریس میں ہی ہو, چاہے کسی وستو میں ہو, چاہے موبائل میں ہو, یا کسی وشیش ویکتی کے ساتھ رہنے کا اچھا ہوگی کہ یہ میرا دوست ہے, یہ میری مدد کرتا ہے. کوئی بھی چیز, آپ نے کچھ پیسہ چھپا کے رکھا ہوا ہوگا, جب وناش آئے گا پتہ لگے گا میں سارا ہی پیسہ یگ میں دے دوں گا, ابھی وناش نہیں آنا, کیا پتہ مجھے ضرورت پڑ جائے. تو بابا کا آدھار تو نہیں رہا نا, پھر پیسے کا آدھار ہو گیا. یا کوئی بھی چیز, وہ آپ کو دو ویکتیوں کے ساتھ کٹھے سو نہیں سکتے, میرے کو نیند نہیں آتی, مجھے تھوڑا الگ کمرہ دے دو, کچھ بھی ہے, وہ آپ کو یوگی بننے سے ڈائیورٹ کر دے گا. تب بابا نے کہا ہے اس پرانی دنیا سے بے حد کا ویراگ اثر نفرت رکھو, اور آسان ہو جائے. دنیا والے بھی نفرت رکھ کے سنیاسی بن جاتے ہیں, تھوڑی دیر بعد جب نفرت ڈھیلی ہو جاتی ہے تو بستر سنیاسی کے رہتے ہیں, کام دنیا کا ہی کرنے شروع کر دیتے ہیں, کچھ نہ کچھ تیرتھ یاترا آدی. یہاں بابا کہتے ہیں کہ تمہیں اس پرانی دنیا سے ہر جو یہاں کی دکھاوٹی چیز جس کے اندر بہت شو ہے, ہر ایک کے اندر وکار گھسا ہوا ہے, چاہے وہ سول چیز ہے چاہے وہ شریرداری ہیں, ایسی نفرت तो नफरत के लिए बाबा ने कहा, आसान करने के लिए मैंने कहा तुम्हें मैंने अच्छा काम दे दिया, खाली नफरत करते रहोगे तो नफरत ध्यान में आ जाएगी, नहीं प्रेम का काम दे दिया कि प्रेम करो तो नफरत आप ही हट जाएगी। तो प्रेम हमें नफरत को दूर कर सकता है। होगी नफरत, जैसे हमें ब्रह्मा बाबा ने कहा था ये शरीर है ये हमें छोड़ना है, इससे हमें घृणा रखनी है अंदर, पर इससे हमें काम भी लेना है क्योंकि इसके बगैर हम देवता नहीं बन सकते। इस प्रकार का डिटैच्ड अटैचमेंट जो होता है वो हमको रखना, और उसके लिए बाबा ने अपने ब्राह्मण बच्चों को बहुत आसान कर दिया। ये जो हमसे सेवा दी है, ये जो हमको कहा योग लगाओ, ये जो हमको दिनचर्या दी है, पढ़ाई दी है, भले हम अपना लौकिक कुछ भी करते रहें, वो इसीलिए है कि हमारा ध्यान ही उस तरफ ना जाए। हम संगम युग वाले हैं, कलयुग में ही संगम युग है, लेकिन हमारे साथ साथ संगम युग चलना चाहिए, छतर छाया बाबा की रहनी चाहिए। अलग से हम हैं, हमारा ड्रेस भी बाबा ने अलग कर दिया, ये तो ऊपर का ड्रेस है, अंदर से हम रहेंगे तो जैसे कोई होता है कि नीचे वाले जो खराब गंदे लोग होते हैं उससे कोई परे होके चलता है, बच के हम आप ही परे होके चलेंगे, क्योंकि साफ के साथ गंदा जुड़ेगा तो साफ नहीं गंदा होना है, गंदे ने साफ नहीं होना, ये पक्की बात है। तो गंदगी कौन सी है, मोटे रूप की गंदगी बाबा कहते हैं सब ब्राह्मणों को पता है, उससे छूट गए हैं, लेकिन जिसको कहते हैं छुपी हुई गंदगी, अदृश्य गंदगी, अंश मात्र जरा सी जो मौका मिलते ही फैल जाती है, जरा सी हम जिसको कहते हैं वो, उसका हमें ध्यान रखना। तो हम क्या कर रहे हैं आजकल, खराब चीज की गंदगी का तो ध्यान ब्राह्मणों को रहता है, लेकिन अच्छी चीज में भी गंदगी होती है वो लापरवाह हो जाते हैं। ये तो साफ कपड़ा दिख रहा है ना, ये तो बहुत अच्छा व्यक्ति दिख रहा है ना, अपनी विशेषता ही हमें नुकसान कर जाती है। इसलिए बाबा ने कहा है इस तरफ का बचाव तो हर एक कर लेता है, यहाँ कीचड़ है, लेकिन ये जो सोने की जंजीर है इसको वो समझते तो सोना है ना, और है जंजीर, उसका हमको ध्यान रखना। इसलिए खास तौर पे जिसको हम मैं शब्द कहते हैं, मैं, इसका बहुत ध्यान रखना, और खास तौर पे कुमारों को और भाइयों को इसका बहुत ध्यान रखना। हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, ब्रह्मा बाबा ने सबसे पहले वंदे मातरम कहा, स्वयं ब्रह्मा बाबा ने 8 बहनों का ट्रस्ट बनाया और कहा कि शिव बाबा का आदेश है कि ज्ञान अमृत का वितरण मातृशक्ति के द्वारा होगा, जो कि मातृशक्ति को किसी भी हमारे धार्मिक पद्धति ने स्थान नहीं दिया था। ठीक है, कुछ कारण होगा, शिव बाबा कहता है मैं भी आपको अपना बच्चा नहीं कह सकता जब तक मैं ब्रह्मा के आकर के अडॉप्ट ना करूं, उसको माना बनाऊं, अगर ब्रह्मा माना हो तो हम भाई बहन बच्चे भी नहीं बन सकते, निराकार रूप में हम परमात्मा से भी कुछ नहीं ले सकते, परिवार ही नहीं बन सकता। अब आप ये बताओ, हम लोगों को भाई का चोला मिला है, ठीक है, क्या हम सचमुच उसी रूप को पालन करते हुए कोई भी बीके ब्रदर अपने आप को माताओं से कभी आगे रखने की कोशिश तो नहीं करते कि मैं ज्ञान को अच्छा समझा सकता हूं, समझा सकते हैं इसमें कोई शक नहीं है, पर बाबा का आदेश यह है कि बहनों के द्वारा ही ज्ञान का वितरण होना है। कहीं अपनी बुद्धि, क्योंकि भाइयों की बुद्धि तेज होती है, हम अपनी बुद्धि से बहनों को बुद्धू तो नहीं समझने लग जाते, इसको तो कुछ नहीं आता, इसको बिठा दिया, मैं करके आता हूं, मैं इसको ज्ञान समझाता हूं, ये एक बहुत बड़ी खतरनाक चीज है। इसलिए इस मैं को हमको दबाना है, हमेशा माताओं बहनों को आगे रखें, बिल्कुल ऐसे आपको बुद्धू भी लगे ना, पर भगवान की बनाई हुई वो देवी है, उसकी भेंट में हमने अगर अपने आप को बराबर रखना, आगे भी जाना है तो पीछे रहना आवश्यक है। ये असूल आपको पक्का रखना करेगा। और वैसे भी अगर हम अपने मैं शब्द को मार दें, जिसको बाबा कहता है हम सब दूसरों को सुनाते हैं, निमित्त बन जाएं, निर्माण बन जाएं, सेवाधारी बन जाएं, विश्व सेवाधारी बन जाएं, बाबा के हम गीत गाते हैं, ब्रह्मा बाबा तुमसे विश्व सेवाधारी, तो हमारा सबसे बड़ा टाइटल है विश्व सेवाधारी। विश्व सेवा ऐसे नहीं कि हम न्यूयॉर्क जाके सेवा करेंगे, यहीं बैठे हुए अपना दृष्टिकोण हमने वैश्विक रखना है। इसका मतलब है लिमिटेड नहीं रखना, ये मेरा सेंटर है, ये मेरी पोजीशन है, ये मेरा घर है, ये मेरा जोन है, ये मैं वाली चीज निकाल दें। हम कहीं भी हैं, जैसे हम हॉल में बैठे हैं, जगह जगह से आए हुए हैं, तो बाबा के बच्चे बैठे हैं, ऐसे ही अगर हमने अपने सेंटर में अंदाजा लगाना शुरू कर दिया कि मेरे ये 150 स्टूडेंट हैं, उसमें मेरा 5वां नंबर है, तो हम धोखा खा जाएंगे, क्योंकि हमारा नंबर सेंटर जोन देश तो क्या, सारे विश्व के ब्राह्मणों में से लगना है। आप सोचो, उसका भी ध्यान रखना है कि एक व्यक्ति न्यूजीलैंड में बैठा हुआ और बिल्कुल बाबा की धारणाओं पे चल रहा है, जहाँ की भाषा भी अलग है, वो अलग है, बाबा से योग खींच के लगा रहा है, अरे मैं तो मधुबन में नहीं हूँ, इंडिया में नहीं हूँ, उसके भी तो नंबर होंगे। इसलिए हमको ये भी ध्यान रखना है, इसको वैश्विक दृष्टिकोण कहते हैं। किसी भी चीज की हद में हमने नहीं आना, हम आत्मा है ही बेहद। अच्छा, आत्मा की खूबी क्या है? आत्मा बिंदु है। आप बिंदु को किसी तरफ से भी फोटो लोगे तो बिंदु ही आएगा, और किसी चीज का फोटो लोगे तो फर्क पड़ जाएगा, बाएं से कुछ होगा तो बिंदु एक गोल चीज है और बिंदु सार चीज है। तब बाबा कहते और छोड़ो, मैं तो आत्मा बिंदु हूं। आत्मा इस शरीर को चलाती है। कभी कभी हम शरीर भान को आत्मिक भान समझ लेते हैं। सुबह उठे, रात को 12 बजे सोए थे, कोई कल्चरल प्रोग्राम देखते रहे, किसी ने कहा भाई सुबह जागना है, नहीं नहीं हम जाग जाएंगे, कल्चरल प्रोग्राम बड़ा अच्छा लग रहा है। सुबह आपकी आंख खुल जाएगी, क्योंकि रोज का आपका अभ्यास है, ऑटोमेटिक खुल जाएगी। उसके बाद आपको याद आएगा, मैं तो रात को 12 बजे सोया था, इसलिए मैं थका हुआ हूं। अब वो मन में आ गया तो फिर आज तो मुझे ये काम करना है, वो काम करना है, तो बाबा कहते हैं ना, लेटे लेटे योग लगा लो, याद ही करना है ना, आत्मा कोई लेटती बैठती थोड़ी है, हम लेट के योग लगा लेते हैं। एक मिनट के बाद क्या होगा, और आंख कब खुलेगी, जब योग का टाइम पूरा हो जाएगा, उस वक्त पूरे 4:45 बजे आंख खुल जाएगी। बताओ, हो गया धोखा। इसलिए बाबा कहता है एक शब्द है अटेंशन, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और माया यही कोशिश करती है, माया और कोई चीज नहीं है, हमारे सबके जो बचे हुए पुराने संस्कार हैं वो घुमा फिरा के हमसे वकालत करके हमको ऐसा कन्विंस कर देते हैं कि तुम ठीक कर रहे हो, और होते वो गड़बड़ है। तब बाबा कहते हैं उस पर कड़ी नजर रखें, उसको हुक्म करके चलाएं। वही चीज आप देखेंगे, आप लेट गए, अच्छा मैंने तो रेस्ट करना है, अचानक आपकी आंख गई, ये दीवार पे एक शिपकली चल रही है या एक मच्छर घूम रहा है, अब वो मच्छर आपको जगा देगा, लेकिन वैसे आप बड़े थके हुए और सोए हुए हैं। कहने का भाव है ये मन हमको धोखा देता है, इसलिए देता है कि हमने मन को ठीक तरह कंट्रोल में नहीं रखा हुआ। तो सार यही बनता है कि छोटी छोटी चीज, छोटी चीजें बड़ी होती, कभी हम छोटी चीज को मिस कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं यहां मिस नहीं करना है, ऑलराउंडर मीन्स ऑलराउंडर, अर्थात हमने अपने अंदर संगम युग का पूरा पाठ भरना है, जितना हमारा भर सके ओवर भी भरना है, ताकि जब हमारा रिकॉर्ड बजे उसमें ये ना लगे कि एक गीत बजा योगी बनो, उसके बाद ब्लैंक आ गया, फिर आ गया ज्ञानी बनो, तो गीत का मजा नहीं आएगा। कोई रिकॉर्ड भी रुक जाए कहीं तो आपका ध्यान नीचे आ जाता है। इसलिए रुकना भी नहीं है, झरने की तरह बहते रहना है। ये नहीं कि योग लगाया अब मेरा योग पूरा हो गया, ये नहीं। तो निरंतर फुल नहीं तो अटेंशन में हम योगी जीवन में रहेंगे, छोटी छोटी बात का ध्यान रखेंगे। अब मीठा बोलना है, अब मीठा तो हम बोलते ही हैं, लेकिन जब पब्लिक में होते हैं तो बहुत मीठा बोलते हैं, अपने साथियों के साथ होते हैं तो साधारण बोलते हैं, और जब कोई ऐसी बात आ जाए जो मैं पसंद नहीं तो चिड़चिड़ा बोलते हैं। तो बाबा कहते हैं चिड़चिड़ापन भी क्रोध का कारण है। इसलिए ये मैं वाली जो चीज है, मैं कुमार हूं या अदर कुमार हूं, ये भी वास्तव में देवभान है। क्यों? क्या मैं कुमार हूं? क्या मैं सारे 84 जन्म कुमारी रहा हूं? या मैं चतुर्भुज हूं? चतुर्भुज हूं तो मेरे दोनों रूप हैं। इसलिए कुमार रूप में होते हुए हमें यह ध्यान रखना है कि मैं कुमार नहीं हूं। जैसे बाबा ने अदर कुमारों को कुमार बना दिया, पहले तो कोई भी व्यक्ति कुमार से अदर कुमार बन जाए तो वापस कुमार नहीं बन सकता, लेकिन बाबा ने अदर कुमारों को भी कुमार बना दिया, नाम लिख दिया कुमार, अदर कुमारी। अर्थ क्या हुआ कि देह से देह में नहीं है। इसलिए जैसे बाबा का जन्म दिव्य और अलौकिक है, हम कहते हैं भगवान का जन्म क्या है, लौकिक जन्म नहीं है, अपना शरीर नहीं है, बाबा ने दूसरे रथ का आधार लिया है, बाबा का जन्म दिव्य और अलौकिक है। क्या आपको अपना ये 84वां सबसे घटिया सबसे तमोगुणी शरीर पसंद है? बाबा कहते हैं आपको मैंने एक तो सतयुगी शरीर दिए हुए हैं, दूसरे संगम युग पर फरिश्ता के चमकीले ड्रेस दिए हुए हैं, तो हम वो नहीं धारण कर सकते। जैसे हम कहीं जाते हैं तो ड्रेस चेंज कर लेते हैं, तो क्या हम ज्यादातर अपनी चमकीली ड्रेस में नहीं रह सकते? चमकीली ड्रेस में आपको पूरी अनुभूति होगी, पूरी फीलिंग आएगी, सिर्फ क्या होगा, स्थूल नहीं होगा। तब बाबा ने हमारे लिए सबसे बड़ा रिट्रीट सेंटर दुनिया का सारे कल्प का बनाया हुआ है, वो कौन सा है? सारी दुनिया का सबसे बढ़िया सब कल्प में एक ही बार बनने वाला रिट्रीट सेंटर कौन सा है? माउंट आबू, ऐसे कर रहे हैं, उसका नाम क्या है जहां ब्रह्मा बाबा इस वक्त हैं? वो है सूक्ष्म लोक। सूक्ष्म लोक 24 घंटे खुला है, वहां आपको सीट में इस तरह टाइट होकर भी नहीं बैठना पड़ेगा कि मेरे साथ कौन बैठा है, वहां आगे पीछे भी नहीं है। और सूक्ष्म लोक में बाबा कहते हैं आप फरिश्ता रूप में रहेंगे तो फरिश्ता में मेल फीमेल भी नहीं होता। अब मुझे बताओ फरिश्ता मेल होता है या फीमेल होता है? बताओ, फरिश्ता कुमार होता है अदर कुमार होता है, कुमारी होती है अदर कुमारी होती है? फरिश्ता मैंने फरिश्ता, इसलिए बाबा कहते हैं कि वो मैंने आपका स्वरूप इसीलिए संगम पर रखा हुआ है, जैसे पंछी काम करता है फिर उड़ जाता है, आप अपने फरिश्ते रूप चमकीली ड्रेस में रहो और उस लोक में आपको जो खाने की इच्छा हो, जो पहनने की इच्छा हो, आपको भरपूर बाबा देगा, और आपका पेट भी खराब नहीं होगा, आपकी ड्रेस टाइट भी नहीं होगी। इतना शानदार वो लोक है। बाबा कहता वहां मैं इसीलिए ठहरा हूं कि आप ऊपर आओ। पहले बाबा नीचे आया कि हमको जरा ले जाए, अब वो कहता आप ऊपर आओ, इसके बाद आपको ऊपर जाना है। इसलिए चलो परम धाम ना सही बिंदु ना सही, तो सूक्ष्म लोक में तो रह सकते हैं फरिश्ता ड्रेस में। तो इसलिए आप वैसे भी शरीर में नहीं रहते इधर उधर जाने की बजाय। तो बाबा कहते हैं साधारणता छोड़ो, व्यर्थ छोड़ो, सूक्ष्म लोक में व्यर्थ होता ही नहीं। सूक्ष्म लोक में विकार ही नहीं जा सकते, निराकारी परम धाम, निर्विकारी सूक्ष्म लोक, निरहंकारी ये लोक। यहां पर बॉडी है तो अहंकार, अहंकार का मतलब कोई मोटे रूप का अहंकार नहीं होता कि मैं फलाना हूं। जैसे ये कहते हैं ब्रिज मोहन जी एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं, तो मुझे हंसी आती है एक्चुअली। ये क्या होता है एडिशनल सेक्रेटरी जनरल, तो दुनिया में होता है। तो हम बाबा के विश्व सेवाधारी बच्चे हैं, तो कई हमारे भाई आजकल PhD भी ले रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि दिव्य और अलौकिक, अलौकिक मैंने हम सब ब्राह्मण संगम युगी अलौकिक है, हमारा जन्म ही अलौकिक है, ना परलौकिक है ना लौकिक है। तो संगम वाले हो गए। तो दिव्य मैंने जिसमें दिव्यता है, अर्थात जिसमें आसुरी संस्कार नहीं है, अहंकार आसुरी संस्कार है।
सतयुग में तुमको आना है, शिव पिता को अब याद करो। ये संगम का स्वर्णिम युग है, शिव पिता
इसलिए एक नामी के साथ चार शब्द और हैं जो एक नामी में ही आ जाते हैं। दूसरा है एकांत। एकांत का मतलब ये नहीं कि हम अकेले रहें, एक के अंत में जाएं। बाबा ने हमको इतना अथाह ज्ञान दिया है, उसमें बाबा के बारे में ही ज्ञान है, ताकि हम उस ज्ञान को धारण कर करके एक के अंत में जाएं, ताकि हम एक नामी बन सकें। दूसरा होता है एकाग्र। तो एकाग्र का भी यही मतलब है, इतना बड़ा गोला है, घूमता रहता है 5,000 साल का, उसको इकट्ठा करो इकट्ठा करो इकट्ठा करो तो बिंदी बन जाएगी। तो इतनी एकाग्रता हमको चाहिए बाबा पर, क्योंकि हमने अब बिंदु बन के जाना है। फिर होता है एक रस्त। ऐसे नहीं कि हमारी अवस्था कभी बहुत अच्छी हो कभी नहीं, तो एक रस रहने के लिए भी अगर एक नामी रहेंगे तो एक रस रहेंगे, अगर और दूसरा नामी किया तो आपकी अवस्था भी अनेक रसों में चली जाएगी। और लास्ट है इकोनॉमी, अर्थात छोटी बचत की योजना। हम बड़ी बड़ी बचत करनी चाहते हैं, कभी भट्टी में आए कभी ये, नहीं, बाबा कहता है जरा जरा स्मॉल सेविंग, अपने बोल में अपने देखने में अपने बचत करेंगे, उससे शक्ति बचती है। देवता भी देखते हैं, देवता भी बोलते हैं, लेकिन जितना देखना उतना ही देखेंगे, जितना बोलना उतना ही बोल लेंगे, न कम न ज्यादा। अंत में जो कुछ मैंने कहा, इसका ये भाव नहीं है कि हम लोगों को बाबा ने धीरे धीरे जल्दी जल्दी चिल्लाते उड़ाते हुए, ऐसे ही हम साधारण हैं। बाबा ने आज भी कहा है, साधारणता नहीं विशेषता अपनी को देखना। एक लड़का था, उसको उसके पिताजी पढ़ा रहे थे, जमा करना सिखा रहे थे घर के बाहर बैठे, तो बोले बेटा 100 और 80 को जमा करो तो कितना होता है, 100 और 80 को जमा करो। तो बेटा बड़ा होशियार था, उसने कहा जी 280। तो पिताजी ने उसको बड़ी थपकी दी, शाबाश बेटा, तू हमारे नाम रोशन करेगा कुल का, नौकर को कहा इसके लिए चॉकलेट लाओ, बहुत होवनहार बेटा है। तो एक व्यक्ति गुजर रहा था, उसने कहा ये क्या बोल रहे हैं, 100 में 80 जोड़ो तो 180, 280, ये तो गलत बोल रहा है। तो रुका, बोला भाई जी आप इसको क्या सिखा रहे हैं, 100 में 80 280, और आप इसको ऊपर से थपकी लगा रहे हैं, इसको चॉकलेट कह रहे हैं। उसने कहा तुमको पता नहीं है, कल इसने 380 कहा था। इसका मतलब क्या हुआ कि बाबा ने हमारी गलती घटाते घटाते बहुत कम कर दी है, अब जरा सा ही मार्जिन रह गया। लेकिन फिर बाबा ये भी कहता है, एक बच्चा आया, उसके स्कूल का रिजल्ट निकला था, माता पिता बड़ा वेट कर रहे थे, पूछा बच्चा कैसा रिजल्ट रहा, कहता जी बहुत ही अच्छा। बड़े खुश हो गए, बोला क्या, कहता इस साल आपको नई किताबें नहीं लेनी पड़ेंगी। अच्छा, भक्ति में हमको सचमुच नई किताबें नहीं लेनी पड़ी, युगो युग हम गीता रामायण पढ़ते रहे, पर यहां तो हमको रोज नई मुरली मिलती है। अंत में एक ऐसा भी था, वो घर के बाहर अपने बच्चे को पीट रहा था जोर जोर से, एक व्यक्ति गुजरा, बोला भाई सुबह इस गरीब को क्यों पीट रहे हो, कहता है कल इसका रिजल्ट आना और कल मैं आउट ऑफ स्टेशन हूं, इसलिए इसका भी ध्यान रखना। ओम शांति।
ओम शांति। अभी एक हाथ उठाकर भाई जी को थैंक्स देंगे जिन्होंने हर तरह से हमारे आगे नकली असली और स्विच ऑन ऑफ क्या क्या भाई साहब ने हमें बहुत अच्छे से शिक्षा दी जो हमारे जीवन में लागू होगी और हमारा जीवन एक आदर्श शोकेस का सैंपल बन जाएगा।